दिन भर 19 नवंबर सोमवार सभी सुनने वालों को मोहम्मद शाहिद का नमस्कार। ट्रंप की सख्त टिप्पणी के बाद पाकिस्तान का पलटवार, कहा अमेरिका के साथ कई कुर्बानियां दी।
मेरे हर पाकिस्तानी घर जो चाहे वो जिस सूबे और जिस इकाई और जिस मजहब और जिस मकसद से उसका ताल्लुक है उसने बहुत कुर्बानियां दी हैं।
अमृतसर में निरंकारी भवन पर हमले के बाद विपक्ष ने उठाए सरकारी नीतियों पर सवाल।
मुख्यमंत्री पंजाब का कैप्टन अमरिंदर सिंह वही नीति वर्त रहे, वही नीति दे आ गए जिहड़ी कांग्रेस गांधी परिवार ने 25-26 साल पहले शुरू की।
पिता दिग्विजय सिंह की तुलना में कमलनाथ को कितना बड़ा नेता मानते हैं जयवर्धन सिंह।
कमलनाथ जी और सिंधिया जी की बहुत अच्छी पकड़ है, उनका भी संपर्क पूरे मध्य प्रदेश में है, वो भी ऐसे कद्दावर और बहुत ही मेहनती नेता है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पाकिस्तान की वित्तीय मदद करने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए कुछ नहीं किया है। अब पाकिस्तान में मानवाधिकार मामलों की नेता शिरीन मजारी ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा है कि ट्रंप का ताज़ा बयान उन पाकिस्तानी नेताओं के लिए सबक है जो हमेशा अमेरिका को खुश करने वाली नीति अपनाते रहे हैं। सऊदी अरब के किंग सलमान ने संसद में दिए अपने सालाना संबोधन में कहा है कि कोई भी अपराध बिना जांच के समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन उन्हें अपने देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हाल ही में अमेरिका की जांच एजेंसी CIA ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस हत्या के बारे में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जानकारी रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने बल्लभगढ़ मुजेसर मेट्रो का उद्घाटन भी किया। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे नाम से जाने जाने वाले इस एक्सप्रेसवे से उम्मीद की जा रही है कि अब राजधानी दिल्ली को बाहर से आने वाले वाहनों से राहत मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे की मदद से राजधानी को प्रदूषण से राहत मिलने की भी उम्मीद है। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे पर 12 साल से काम चल रहा था, ये 8-9 साल पहले ही मिल जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा
कि इस एक्सप्रेसवे पर 12 साल से काम चल रहा था, ये एक्सप्रेसवे आपको 8-9 साल पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले की सरकारों के जो तौर तरीके थे उसने इस एक्सप्रेसवे को पूरा होने में 12 साल लगा दिए।
ये थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के 27 देशों के मंत्रियों की बैठक हुई है। इस बैठक में ब्रिटानी सरकार के अगले साल यूरोपीय संघ से बाहर निकलने में जुड़े मसौदे पर चर्चा हुई। बैठक के बाद ऑस्ट्रिया के यूरोपीय मामलों के मंत्री गेरनोट ब्लूमेल ने कहा कि ब्रेग्जिट के मुद्दे पर सभी 27 देश एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच होने वाला तलाक दोनों ही पक्षों के लिए बेहतर होगा। गेरनोट ब्लूमेल ने कहा,
ब्रेकअप्स आर नेवर इजी but it always is better when it happens on
ब्रेकअप कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जब यह दोस्ताना तरीके से हो तो बेहतर होता है। आने वाले वक्त में अच्छे रिश्ते बरकरार रखने के लिए भी यही तरीका अच्छा रहेगा। ये थे ऑस्ट्रिया के यूरोपीय मामलों के मंत्री के शब्द। चीन के शीर्ष अभियोजकों ने देश की निचली अदालतों से अपील की है कि वे बाल यौन शोषण मामलों में उन व्यक्तियों पर भी आरोप तय करें जिन्होंने बच्चों के साथ इंटरनेट के जरिए और बिना शारीरिक संबंध बनाए संपर्क किया। यह अपील दरअसल उस मामले के बाद की गई है जिसमें 25 साल के एक व्यक्ति पर बच्चों को नग्न तस्वीरें भेजने के आरोप लगे थे। जापान की कार निर्माता कंपनी निसान के चेयरमैन कार्लोस घोष को टोक्यो में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कार्लोस पर वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप है। इसराइल के शिक्षा मंत्री नफ्तली बेनेट बेन्यामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार में बने रहने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल उन्होंने ये फैसला आगामी चुनावों को देखते हुए लिया है। पिछले सप्ताह ही इसराइल के रक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद नेतन्याहू के पास एक ही सीट बहुमत रह गया था। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान पर की गई सख्त टिप्पणी का प्रधानमंत्री इमरान खान ने जवाब दिया है। ट्रंप ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान की वित्तीय मदद रोकने को सही ठहराते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने अमरीका के लिए कुछ भी नहीं किया है। सुनिए इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता शहजाद मलिक की ये रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए पाकिस्तान कभी भी 9/11 में मुलविस नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने मिलिटेंसी के खिलाफ जंग में अमरीका का साथ देने का फैसला किया। अपनी ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस जंग में पाकिस्तान ने 75,000 अफराद की कुर्बानियां दी और $130 अरब का नुकसान बर्दाश्त किया, जबकि इस बारे में अमरीकी इमदाद सिर्फ $20 अरब की है। प्रधानमंत्री का कहना था कि इस युद्ध में पाकिस्तान के कबाली इलाके तबाह हुए और लाखों अफराद बेघर हुए। उन्होंने कहा कि इस युद्ध ने आम पाकिस्तानियों की जिंदगियों को मुतासर किया है। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान आज भी अमरीकी फोर्सेज को अपने ज़मीनी और फिजाई रास्ते इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है। अपनी ट्वीट में इमरान खान ने अमरीकी सदर से पूछा है कि क्या वो अपने किसी दूसरे इतिहादी मुल्क का नाम बता सकते हैं जिसने इस युद्ध में इतनी कुर्बानियां दी हों। अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी सदर के बयान पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि अमरीका के लिए पाकिस्तान ने बुढ़भेड़ समेत वो युद्ध लड़े हैं जो पाकिस्तान के नहीं थे। जूनियर होम मिनिस्टर शहरयार खान आफरीदी ने कहा कि मिलिटेंसी के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन दुनिया ने इन कुर्बानियों को उस तरह तस्लीम नहीं किया जिस तरह किया जाना चाहिए था।
इस नए पाकिस्तान में दुनिया को ये बता दिया गया है कि बराबरी की सतह पे सबको इज्जत देंगे, डू मोर नहीं सुनेंगे, यू हैव टू डू मोर बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी डन अ लॉट। हमने बहुत किया, हम इज्जत देते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं। मेरे हर पाकिस्तानी घर, जो चाहे वो जिस सूबे और जिस इकाई और जिस इलाके और जिस मजहब और जिस मकसद से उसका ताल्लुक है, उसने बहुत कुर्बानियां दी हैं।
वाज़ह रहे कि इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने इतवार को अमरीकी टेलीविजन चैनल फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादन को अपने मुल्क में रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर किसी को मालूम था कि ओसामा बिन लादन फौजी अकेडमी के करीब रहते हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान को $1.3 अरब सालाना इमदाद दे रहा है। उन्होंने कहा कि अमरीका अब ये इमदाद नहीं दे रहा और मैंने ये इमदाद बंद कर दी थी क्योंकि पाकिस्तानी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती। ये पहला मौका नहीं है कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया है। इस साल के शुरू में उन्होंने कहा था कि अमरीका ने 15 सालों में पाकिस्तान को $33 अरब बतौर इमदाद देकर बेवकूफ़ी की, जबकि पाकिस्तानी लीडरशिप ने अमरीका को सिवाय झूठ और धोखे के कुछ नहीं दिया। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
पंजाब के अमृतसर में कल निरंकारी भवन में हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। ये हमला सत्संग के दौरान हुआ। इस हमले के बाद जहां सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं आज इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। सुनिए अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
अमृतसर के गांव अदलीवाल में रविवार के रोज हुए ग्रेनेड हमले की जांच का दायरा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के आने के बाद बढ़ गया है। पुलिस का दावा है कि उन्हें कुछ लीड्स मिली हैं जिनकी बिना पर वे अपनी जाँच कर रही हैं। पंजाब सरकार ने भी इस घटना को अंजाम देने वाले युवकों के बारे में जानकारी देने वाले को 50 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। यहाँ बताते चलें कि कल सुबह गांव अदलीवाल में ननकारी सत्संग भवन में हुए ग्रेनेड अटैक में ननकारी संप्रदाय के 3 अनुयायी मारे गए थे और 20 लोग जख्मी हो गए थे। ग्रेनेड हमला 2 नकाबपोश युवकों ने किया है, ऐसा पुलिस बताती है। पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज घटनास्थल का दौरा किया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस घटना को 80 के दशक में हुए ननकारी कांड के साथ जोड़ना गलत होगा। उनका कहना था,
ये जरा कुछ होया है वाकयात, असि इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। देयर इज फुल इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, लीड्स ने जरी साडी पुलिस इज फॉलोइंग अप एंड आई एम होपफुल दैट वी विल सून कैच दिस पीपल।
ननकारी मिशन के नॉर्थ इंडिया की प्रवक्ता जोगिंदर कौर का कहना था कि उनके संप्रदाय का किसी के साथ विवाद नहीं है। उनका कहना था,
ये जो हुआ है उसके बारे में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमारा किसी के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, शांति का मिशन है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हमलावरों के स्केच जारी किए जाने वाली खबरों का खंडन किया है और बताया कि पुलिस ने ऐसे कोई भी स्केच जारी नहीं किए हैं। और दूसरी तरफ इस घटना को लेकर पंजाब में सियासत गर्मा गई है। श्रोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने इस घटना के पीछे कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेवार ठहराया है। उनका कहना था,
मुख्यमंत्री पंजाब का कैप्टन अमरिंदर सिंह वही नीति वरत रहे, वही नीति दे आ गया जिहड़ी कांग्रेस गांधी परिवार ने 25-26 साल पहले शुरू की।
अमृतसर ग्रेनेड ब्लास्ट पर आम आदमी पार्टी के विधायक और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील HS फुल्का ने कल अपने विवादित बयान पर माफी मांग ली है। उनका कहना था कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। यहाँ बताते चले कि कल ग्रेनेड हमले के बाद फुल्का ने अपने बयान में इस हमले के पीछे भारतीय फौज मुखी जनरल विपिन रावत को जिम्मेवार ठहराया था। कैप्टन ने फुल्का के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें सीनियर वकील और सीनियर लीडर होने के नाते इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। अमृतसर ग्रेनेड अटैक को 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है। जांच एजेंसी अपने जांच कार्य में लगी हुई हैं। उनका दावा है कि उन्हें कुछ क्लू मिले हैं जिनके बिना पर वो जल्द ही दोषियों को पकड़ लेंगे। BBC हिंदी के लिए अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन।
वहीं केरल में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल निकला है। आज केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री KJ अल्फोंस सबरीमाला की बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण करने गए, जहां उन्होंने वाम सरकार पर श्रद्धालुओं में डर फैलाने का आरोप लगाया। सुनिए सबरीमाला से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री अल्फोंस कन्नम थानम आज सबरीमाला मंदिर की बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने निरीक्षण करने के बाद राज्य की वाम मोर्चा सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा,
नो सिचुएशन इज वेरी बैड, आई थिंक देयर इज अ टेरर बीइंग अनलीश्ड ऑन द पीपल।
परिस्थिति बहुत ही खराब है, यहाँ दहशत का माहौल फैलाया जा रहा है और हमें तो ज्यादा भक्त भी नहीं दिखे। बहुत ही कम लोग यहाँ आ रहे हैं क्योंकि सरकार ज्यादा लोगों को आने से रोक रही है। ये थे अल्फोंस कन्नम थानम के शब्द। अल्फोंस का इल्जाम ये भी था कि सरकार के इशारों पर पुलिस हिंसा करा रही है। ये बयान तब आया है जब कल रात को पुलिस ने 68 लोगों को मंदिर के सन्निथानम से हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार ये लोग मंदिर बंद होने के बाद वहीं रुकना चाहते थे, लेकिन CPM के राज्य सचिव कोडियरी बालकृष्णन ने कहा, मंदिर के सन्निधानम में कल रात को जो भी लोग मुश्किल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे वो RSS से ही जुड़े लोग थे। कल रात के मामले में राजेश नाम का RSS का ही बंदा था। RSS की ही शाखा के सदस्यों को ये काम दिया गया है कि हर रोज एक इलाके के लोग सबरीमला जाकर वहां अव्यवस्था पैदा करें। ये थे कोडियरी बालकृष्णन के शब्द। BJP और CPM के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह सबरीमला के विषय का उपयोग किया जा रहा है उसे ये स्पष्ट होते आ रहा है कि सबरीमला एक युद्ध क्षेत्र बन गया है। जैसे कि एक तमिलनाडु से आए हुए भक्त अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर कहते हैं कि भक्त इस युद्ध का खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो शांतिपूर्ण माहौल में स्वामी अय्यप्पा की प्रार्थना कर सकें। इमरान कुरैशी, BBC, पंबा, सबरीमला, केरला।
अब आते हैं कुछ चुनावी खबरों की ओर। राजस्थान में विपक्ष भाजपा सरकार से उसके 5 साल के काम का हिसाब मांग रहा है, लेकिन विश्लेषक कांग्रेस की विपक्ष के रूप में उसकी भूमिका का आकलन भी कर रहे हैं। सामाजिक संगठन कहते हैं कि बड़े बड़े मुद्दों और घटनाओं पर विपक्ष मैदान में दिखाई नहीं दिया। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
मुद्दे बहुत थे, घटनाएं भी थी, लेकिन कभी रोजगार मांगती जवानी खुद सड़कों पर उतरी तो कभी सामाजिक संगठनों ने मोर्चा निकाला। पिछले साल किसानों ने अपनी मांगों को लेकर शेखावाटी अंचल में कोई 10 दिन तक जनजीवन ठप्प कर दिया। इस दौरान किसानों की कथित खुदकुशी के मामले भी आए, मगर प्रेक्षक कहते हैं मुख्य विरोधी दल कांग्रेस विपक्ष की कारगर भूमिका नहीं निभा सका। विश्लेषक प्रोफेसर राजीव गुप्ता कहते हैं,
नहीं, कांग्रेस ने किया ही नहीं कोई आंदोलन। कांग्रेस की तो आंदोलन के प्रति उनकी अपनी जो तटस्थता है, ना तो शिक्षा के मुद्दे पर, ना स्वास्थ्य के मुद्दे पर, ना सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, ना जातियों के मुद्दे पर, ना महिलाओं के मुद्दे पर। गांव के अंदर इन्होंने जिस तरह से विकास नहीं किए, उस विकास की समूची प्रणाली को लेकर के इन्होंने कभी किसी तरह की कोई बात की नहीं, और अगर कोई बात कही तो बिल्कुल ऐसे दबे छुपे सुर के साथ में, कोई एक छोटा मोटा आंदोलन जैसे कोई रिचुअल करना हो।
राज्य विधानसभा में सत्तारूढ़ BJP का प्रचंड बहुमत था, जबकि विपक्ष की संख्या छोटी थी। राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट कहते हैं, कांग्रेस ने आवाम के मुद्दों पर बखूबी संघर्ष किया है।
जो संघर्ष हम लोगों ने किया है वो पॉलिटिकल भी है लेकिन सैद्धांतिक उन मुद्दों को लेकर किया जो हमें लगता है कि लोगों के जहन के बहुत करीब थे। लगातार जब चुनौती आई तो हमारी पार्टी ने जितना हो सका सरकार का सकारात्मक विरोध किया है।
एक कामयाब लोकतंत्र की कसौटी में सत्ता पक्ष होता है तो मजबूत विपक्ष भी। कभी समाजवादी चिंतक डॉक्टर रामनोर लोहिया ने कहा था, अगर सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाएगी। राज्य में बीजेपी नेता और समाज कल्याण मंत्री अरुण चतुर्वेदी विपक्ष के किरदार पर कहते हैं,
मुझे विपक्ष नहीं दिखा। मैं कह सकता हूं कि विपक्ष ना तो सड़कों पर दिखा ना सदन के अंदर दिखा, केवल खानापूर्ति करने का काम किया। और अगर मैं ईमानदारी से कहूं, साफ गोशी से मानता हूं उस बात को कि पूरी कांग्रेस पार्टी धड़ों में बटी हुई है, कौन किस नेता के साथ और कह रहे थे उसके आधार पर ही उनके अपने कार्यक्रम तय हो।
इन 5 सालों में सामाजिक संगठन हर उस मकाम पर पहुंचे जहां विपक्ष गैर हाजिर था। सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे कहते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों ने निराश किया है।
हम सरकार से तो असंतुष्ट हैं ही लेकिन ऑपोजिशन से भी हम बहुत असंतुष्ट हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ के धरने प्रदर्शन किए। जब राशन से 1 करोड़ नाम कटे हम लोगों ने आवाज उठाई, जब राशन में मिल नहीं रहा लोगों को हमने आवाज उठाई, जब शिक्षा में स्कूल में नहीं लगे अध्यापक हम सड़कों पे गए और पूरे राज्य में गए।
यह बदलते दौर की सियासत है। प्रेक्षक कहते हैं, ना तो सदन के पटल की अहमियत है, ना ही सड़कों पर जल्द से जुलूस की, बल्कि अब सियासत के लिए सोशल मीडिया ताकत तोलने का मैदान हो गया है। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
वहीं दूसरे चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है और कांग्रेस ने इस बार प्रदेश के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे किया हुआ है। वहीं दिग्विजय सिंह प्रदेश में घूम तो रहे हैं लेकिन रैलियों में भाषण नहीं दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने अपनी राजनीतिक विरासत बेटे जयवर्धन सिंह के हवाले कर दी है। BBC संवाददाता रजनीश कुमार ने बात की राघोगढ़ से चुनाव लड़ रहे जयवर्धन सिंह से।
जब से मैं चुनाव जीत के आया हूँ पिछले 5 साल में निरंतर कम से कम 12 से 14 घंटे मैंने हर दिन काम किया है। हमेशा ये सोच रही है कि चाहे चुनाव हो या ना हो हमको जनता के बीच रहना चाहिए, क्योंकि आखिर जनता अपना मत देती है जनप्रतिनिधि को, तो इसलिए देती है ताकि वो निरंतर उनकी सेवा में उपस्थित रहे। तो निरंतर 5 साल मैंने प्रयास किया है कि हर दिन जनता के बीच रहने का, उनकी सुनवाई करने का, उनकी मदद करने का।
आपकी जो परवरिश हुई है एक राजसी परिवार में, उसके बाद अचानक से लोगों के बीच जाना, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में शामिल होना, क्या कुछ तालमेल बैठा पाते हैं या फिर उसमें कुछ अनबैलेंस जैसा लगता है आपको?
जी, असल में जब से भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ है यहाँ पर कोई राजा महाराजा बचे ही नहीं। हाँ, एक हमारा पुराना परिवार है और हमारे यहाँ पे पीढ़ियों से जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र है, जो पूरा रावण शहर है, यहाँ पर जनता के साथ हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं। और क्योंकि मेरे पिता भी, मेरे काका भी और मेरे ग्रैंडफादर भी यहाँ से विधायक निर्वाचित रह चुके हैं, तो एक प्रकार से यहाँ के जनता के साथ हमारा बहुत ही नज़दीकी संबंध है। लेकिन हमने कभी खुद को किसी से ऊपर नहीं माना है।
आपके पिताजी इस प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 10 साल में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था कि 15 साल तक कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई?
देखिए, उसमें उनकी कोई गलती ऐसी नहीं थी। वो तो क्या था, 10 साल के बाद जनता ने उस समय वोट किया परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए। और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो 10 साल के लिए मध्य प्रदेश राजनीति से और विशेषकर कोई भी राजनीतिक पद से उन्हें संन्यास लिया था, और सिर्फ उन्हें पार्टी के लिए 10 साल काम किया था, बाकी अन्य राज्यों में। 2013 में उनका ये संन्यास जो था कोई भी पॉलिटिकल पद से पूरा हुआ है। अब उन्हें वापस राजनीति जो मध्य प्रदेश की है उसमें वो सक्रिय रहे हैं। उन्होंने भी नर्मदा परिक्रमा भी की थी 6 महीने की, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस बार तो परिवर्तन की लहर पूरे मध्य प्रदेश में है।
आपके पिताजी की जो छवि रही है, जो उनकी नीतियाँ रही हैं, कई लोग कहते हैं कि वो बड़े प्रोग्रेसिव थे, लेकिन उनकी मीडिया में जो छवि बड़ी निगेटिव किस्म की छवि बनी है, तो आपने कभी कहा नहीं कि आपके बयानों से आपकी छवि खराब हो रही है, जबकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं है?
असल में वो 10 साल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष से वो विधायक बने, वो सांसद बने, मंत्री बने, PCC अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद राज्यसभा के। तो जिस व्यक्ति के पास 40 साल का राजनीतिक अनुभव है, कोई व्यक्ति जो 5 साल का विधायक है वो क्या कह सकता है? और वैसे भी जो भी वो हमेशा बयान देते हैं उनके पास पक्का सबूत रहता है, और वो तो एक प्रकार से जो उनके एंटी लोग हैं उन लोगों ने उनका एक गलत प्रचार किया है।
शिवराज सिंह चौहान जो कि यहाँ के 13 साल से मुख्यमंत्री हैं, और उनकी जो छवि है बड़े ही विनम्र किस्म की छवि कही जाती है, आपका क्या आकलन है उनके बारे में?
उनने स्पष्ट रूप से कहा था पाँच साल पहले कि मुझे जब चुनाव हो रहे थे 2013 में कि मुझे पाँच साल और दो, मैं किसान की आय दोगुनी कर दूंगा। उनके पाँच साल और बीत गए हैं और वर्तमान में चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, दोनों भाजपा के हैं, लेकिन पिछले चार पाँच साल में किसान की आय दोगुनी में आधी हो गई है। खाद और DAP की रेट दोगुना बढ़ गई है।
जब मैं BJP के प्रवक्ताओं से मिलता हूँ या फिर आपके कार्यकर्ताओं से, आपके नेताओं से, तो सब ये कहते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई नेता है तो दिग्विजय सिंह हैं, क्योंकि उनके आदमी जिले में हैं, ब्लॉक स्तर पे हैं, वो प्रदेश को जानते हैं। लेकिन कमलनाथ और सिंधिया के बारे में लोग कहते हैं कि उनको वो प्रदेश को पूरी तरीके से जानते नहीं है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं?
कमलनाथ जी और सिंधिया जी की भी बहुत अच्छी पकड़ है, उनका भी संपर्क पूरे मध्य प्रदेश में है। वो भी ऐसे कद्दावर और बहुत ही मेहनती नेता है जिनका प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में है।
तो किसको आप CM देखना चाहते हैं, सिंधिया या कमलनाथ?
देखिए, हम किसी एक का नाम नहीं ले सकते, दोनों के अलग अलग ऐसे उनके बिंदु हैं जिनके द्वारा उनकी लोकप्रियता बहुत है पूरे मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी बहुत अनुभवी नेता हैं, 9 या 10 बार के सांसद हैं। जितना काम उन्होंने छिंदवाड़ा में किया है शायद इतिहास में कोई भी सांसद ने कहीं नहीं किया होगा पूरे देश में। तो उनका जो छिंदवाड़ा मॉडल है हमने कायम इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे मध्य प्रदेश में। साथ में सिंधिया जी एक युवा चेहरे हैं, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत मजबूत है।
ये थे दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह, जिनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। श्रोताओं, आप हमें बड़े चाव से पत्र और मेल लिखते हैं, आपकी राय में जान लेते हैं आज आपके पत्रों के बारे में। आपकी राय। नमस्कार, आज आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी और मेरे साथ स्टूडियो में हैं
सूर्यांशी पांडे।
जी सूर्यांशी, करें चिट्ठियों का सिलसिला शुरू। मैं देख रहा हूं आपके पास डाक से आई हुई चिट्ठियां हैं।
हाँ, और आज हम सबसे पहले डाक की चिट्ठियां लेंगे, क्योंकि लक्ष्मण दास शर्मा जी की ना एक बहुत बड़ी शिकायत है और उन्होंने एक दो लाइन लिखी है इस पर कि कहां जाएं क्या करें या बिन पानी डूब मरे, ये उन्होंने लिख दिया है अब तो। और उन्होंने कहा है कि आपकी राय में आप पत्रों को शामिल अब नहीं करते, ज़्यादातर ईमेल रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? इस बात से उन्हें बहुत बड़ी शिकायत है और ये मंडलाना नारनौल से लिखते हैं,
यानी कि हरियाणा से लिखते हैं। हाँ। हमारे बिल्कुल करीब हैं, लेकिन इनकी चिट्ठी डाक से आई है, अंतर्देशीय चिट्ठी है। और देखिए, हमने आपकी चिट्ठी को शामिल किया और हम अपनी तरफ से ज़रूर ये कोशिश करते हैं और हम बार बार ये कहते भी हैं कि हम ईमेल और चिट्ठियां दोनों को शामिल करना चाहते हैं, लेकिन चिट्ठियां पहले लिखी गई होती हैं इसलिए अक्सर हम उनको पहले पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पहुंचने में समय लगता है, वक्त लगता है। तो हम आपको फिर एक बार कहना चाहते हैं, जो लोग हमें डाक से पत्र भेजते हैं, कि हम डाक और ईमेल दोनों की चिट्ठियाँ हमेशा लेते हैं इस कार्यक्रम में। और देखिए, मुझे उम्मीद है कि इनकी शिकायत, शर्मा जी की शिकायत जो है वो दूर हो गई होगी।
जी, अगला जो खत है वो सभी अंसारी ने लिखा है और ये लिखते हैं धनबाद से, और इनकी शिकायत सरकार से है सीधा सीधा। और ये कह रहे हैं कि आजकल जो भाजपा सरकार मुसलमानों पर जिस तरह के नफ़रत का एक लेबल लगा रही है और हिंदू युवाओं में नफ़रत फैला रही है और कह रही है कि मुसलमान तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, ये बहुत ही गलत प्रचार किया जा रहा है, ये उनकी राय है।
इसके विपरीत और भी बहुत सारी दूसरे लोगों की राय है जिनका ये कहना है कि BBC जो है वो हिंदुओं के विरुद्ध है, हिंदुओं के खिलाफ हमारे प्रसारण होते हैं। हम सब श्रोताओं से यही गुजारिश, अनुरोध करना चाहते हैं कि आपकी राय चाहे जो भी हो, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि तथ्य क्या है, सत्य क्या है, कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसके बारे में पड़ताल करें, अपने आँख कान खुले रखें और किसी के भी, चाहे वो कोई भी हो, उसके बहकावे में ना आए। तो आइए अब कुछ ईमेल भी ले लें, वरना ईमेल वाले शिकायत करेंगे।
बिल्कुल, तो आगे अगर हम ईमेल की बात करें तो पहला ईमेल सादिक आजमी सऊदी अरब से हम ले रहे हैं, जिन्होंने विवेचना पर तारीफ अपनी की है। बाल ठाकरे की बरसी पर जो की गई विवेचना थी रेहान फजल द्वारा, वो बेहद पसंद की गई है। और इसी पे हम एक पत्र भी ले सकते हैं जिसमें विवेचना की तारीफ की गई है, लेकिन ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले वीर सैनिकों पर की थी और ये अशोक कुमार ठाकुर ने इसकी तारीफ की है।
जी, ये है पोस्ट अदलपुर जिला दरभंगा बिहार से। हाँ। बहुत शुक्रिया। ये विवेचना पहले प्रसारित हुई थी विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की भूमिका पर, और बाल ठाकरे वाली हाल में हुई थी, इसीलिए जो डाक से चिट्ठी आई है वो पिछली विवेचना के बारे में है और जो ईमेल से चिट्ठी आई है वो ताज़ा वाली विवेचना के बारे में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का डाक से और ईमेल से पत्र लिखने के लिए।
अब एक ऐसे ईमेल हम पढ़ने जा रहे हैं जो 15 वर्षों से बीबीसी को सुन रहे हैं। उनका नाम है रमेश बांका, बिहार से लिखते हैं, और इन्होंने लिखा है कि वसुतुल्ला खां की डायरी, आदेश कुमार गुप्त का खेल खिलाड़ी हमें बेहद पसंद है, और दुनिया जहां रेहान फजल सर की विवेचना भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब एक बार में उन्होंने सबकी तारीफ कर दी,
अपनी पसंद उन्होंने बता दी। बहुत शुक्रिया। जब आपको कोई चीज नापसंद आए तो वो भी बताइएगा, उसका भी स्वागत है।
अगला ईमेल जो है वो भेजा है बेगूसराय बिहार से, और इनका नाम है जीशा नैयर। ये लिखते हैं कि विवेचना इस हफ्ते बाला साहेब ठाकरे पर थी और सुनकर बहुत अच्छा लगा, और मैंने कई बार कहा है कि मौलाना आजाद पे विवेचना होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
जीशान साहब, पत्र लिखने के लिए शुक्रिया। जीशान हमारे नियमित श्रोता हैं, और जब मौका आएगा तो हम मौलाना आजाद पर विवेचना भी आपको सुनवाएंगे। आप निश्चिंत रहें कि हम जानते हैं कि मौलाना आजाद की कितनी अहमियत है भारत के इतिहास में, तो वो हम आपको सुनवाएंगे। आप इसी तरह से हमें पत्र लिखते रहें, ईमेल से, डाक से। अगर आप ईमेल से चिट्ठी भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk, और अगर आप डाक से पत्र भेजना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003।
नमस्कार।
आपके पत्रों के उत्तर दे रहे थे बीबीसी हिंदी सेवा के डिजिटल एडिटर राजेश प्रियदर्शी और सूर्यांशी पांडे, और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं सुमिरन प्रीत कौर। शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। भारत का ऑस्ट्रेलियन टूर शुरू होगा 21 नवंबर से। इस श्रृंखला में T20 मैच शामिल हैं, टेस्ट मैच शामिल हैं, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच शामिल हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है और टेस्ट मैच में उसे थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है।
We expect that from the whole team as well, that individuals take more responsibility.
हम उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ी टीम में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी लें, सिचुएशन में खुद हल ढूंढने की कोशिश करें, और टेस्ट क्रिकेट में हमें और ध्यान देने की जरूरत है।
और अब बात करते हैं उस श्रृंखला की जो चल रही है इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच। कल दूसरा टेस्ट मैच खत्म हुआ इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच पल्लीकेल में, और इस मुकाबले को इंग्लैंड ने अपने नाम किया। 3 टेस्ट मैच की श्रृंखला में से 2 को अपने नाम कर इंग्लैंड ने ये सीरीज जीत ली है। अब इस श्रृंखला में एक और मुकाबला होगा 23 नवंबर से कोलंबो में। अब बात ICC विमेंस वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप की। 22 नवंबर को होगा पहला सेमीफाइनल मुकाबला, जो होगा ऑस्ट्रेलियन और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के बीच। वहीं दूसरी तरफ मुकाबला होगा 23 नवंबर को इंग्लैंड और इंडिया के बीच। और जाने से पहले बात टेनिस की। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने ATP फाइनल्स में वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराया और ये खिताब अपने नाम किया। 21 वर्षीय अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने नोवाक जोकोविच को 6-4, 6-3 से हरा दिया। खेल की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
अब से कुछ ही देर में भारत में बजेंगे रात के 8, और वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का। लेकिन कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान में मानवाधिकार मामलों की नेता शिरीन मजारी ने कहा है कि ट्रंप का ताज़ा बयान उन पाकिस्तानी नेताओं के लिए सबक है जो हमेशा अमेरिका को खुश करने वाली नीति अपनाते रहे हैं। सऊदी अरब के किंग सलमान ने संसद में दिए अपने सालाना संबोधन में कहा है कि कोई भी अपराध बिना जांच के समाप्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने बल्लभगढ़ मुजेसर मेट्रो का भी उद्घाटन किया। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के 27 देशों के मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में ब्रिटानी सरकार के अगले साल यूरोपीय संघ से बाहर निकलने से जुड़े मसौदे पर चर्चा हुई। चीन के शीर्ष अभियोजकों ने देश की निचली अदालतों से अपील की है कि वे बाल यौन शोषण मामलों में उन व्यक्तियों पर भी आरोप तय करें जिन्होंने बच्चों के साथ इंटरनेट के जरिए और बिना शारीरिक संबंध बनाए संपर्क किया। जापान की कार निर्माता कंपनी निसान के चेयरमैन कार्लोस घोस्नू को टोक्यो में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला दीपक जसरोटिया ने। आपसे अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आएं हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।